पहली सदी में अगर किसी को दुनिया जीतनी होती थी ना, तो उसका सीधा सा तरीका था,
एक विशाल सेना तैयार करना,
बिल्कुल रोम की तरह, तलवारों, ढालों और खौफ का इस्तेमाल करना। मतलब इतिहास गवाह है कि सत्ता हमेशा उसी ने हासिल की है जिसने दूसरों को घुटने टेकने पर मजबूर किया।
जाहिर है उस समय ताकत का यही एक पैमाना था।
हाँ, लेकिन यरूशलम में हाशिए पर पड़े लोगों के एक बहुत ही छोटे से समूह ने पूरी ज्ञात दुनिया को जीतने का फैसला किया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उन्होंने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया।
अरे हथियार तो छोड़िए, उनके पास तो कोई राजनीतिक समर्थन भी नहीं था।
सही कहा, बल्कि इसके बजाय उन्होंने नस्लवाद, वर्गवाद और लिंगभेद जैसी उन सामाजिक दीवारों को व्यवस्थित रूप से ढहाने का काम किया जो मतलब मानवता को सदियों से बांटे हुए थी।
तो इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है।
हाँ, और आज का विषय बहुत ही खास है। बिल्कुल है, आज हमारे पास जो स्रोत है वो इतिहास और धर्मशास्त्र के नजरिए से किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। ये डॉक्टर क्रेग कीनर द्वारा एक्ट्स यानी प्रेरितों के काम की किताब के अध्याय 1 और 2 पर दिया गया एक बेहद विस्तृत और शोधपूर्ण व्याख्यान है।
और ये स्रोत उस पारंपरिक धारणा को पूरी तरह से चुनौती देता है जहां सामाजिक अशक्तिकरण या शक्ति को केवल व्यक्तिगत शांति पाने तक सीमित मान लिया जाता है।
हाँ, या फिर किसी धार्मिक कर्मकांड तक।
एकदम सही। डॉक्टर कीनर का शोध ये स्थापित करता है कि प्रारंभिक ईसाई आंदोलन ने इस शक्ति का उपयोग केवल खुद को बचाने के लिए नहीं किया था, इसके पीछे एक बहुत गहरा समाजशास्त्रीय उद्देश्य था।
मतलब समाज के काम करने के तरीके में एक बहुत ही व्यवहारिक और जमीनी स्तर का बदलाव लाना।
बिल्कुल,
और हमारी इस चर्चा का मिशन भी यही है, उस पूरे तंत्र को समझना कि कैसे एक आध्यात्मिक घटना ने सांस्कृतिक सीमाओं को तोड़ा। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत में एक बहुत ही दिलचस्प और अजीब सी स्थिति पैदा होती है।
वो शिष्यों वाला किस्सा है ना?
हाँ।
चेले यानी शिष्य यीशु के पास आते हैं और उनसे एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो उनकी उस समय की सीमित और स्थानीय सोच को दर्शाता है। वे जानना चाहते थे कि क्या अब इसराइल के राजनीतिक राज्य को बहाल करने का समय आ गया है।
मतलब वे एक भौगोलिक और राजनीतिक क्रांति का इंतजार कर रहे थे।
एकदम, उन्हें लगा अब सत्ता पलटेगी। देखा जाए तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। जब लोग सदियों से किसी साम्राज्य के अधीन हो, जैसे कि वे रोम के अधीन थे, तो वे सबसे पहले अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में ही सोचते हैं।
जाहिर सी बात है।
लेकिन यीशु का जवाब उनकी सोच के दायरे को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। वे स्पष्ट करते हैं कि जो नई शक्ति उन्हें मिलने वाली है वो यरूशलेम में कोई नया तख्त बिछाने के लिए नहीं है।
तो फिर किस लिए थी?
उसका उद्देश्य था पृथ्वी के छोर तक गवाही देना।
अरे वाह, ये तो रातों रात एक स्थानीय एजेंडे को वैश्विक मिशन में बदल देने जैसा हुआ।
बिल्कुल, एक बहुत बड़ा शिफ्ट था ये।
ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सोचिए किसी व्यक्ति को जीवन भर एक छोटे से गांव का सरपंच बनने की ट्रेनिंग दी गई हो।
अच्छा।
और अचानक उसे एक ग्लोबल पासपोर्ट और हर भाषा समझने वाला एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर थमा दिया जाए और कहा जाए कि जाओ पूरी दुनिया के कूटनीतिक मसले सुलझाओ।
ये मेयर या सरपंच वाली उपमा मिशन के पैमाने को तो अच्छे से दर्शाती है, लेकिन इसके ऐतिहासिक वजन को पूरी तरह से नहीं पकड़ पाती।
वो कैसे?
क्योंकि यरूशलेम केवल एक छोटा गांव नहीं था, वो उनके लिए पूरी की पूरी विरासत था, वो उनकी आस्था का केंद्र था। डॉक्टर कीनर इसे विरासत से मिशन की ओर बढ़ने की एक जटिल प्रक्रिया के रूप में समझाते हैं।
मतलब वे अपनी जड़ों को छोड़ नहीं रहे थे?
नहीं, वे यरूशलेम की उस ऐतिहासिक नींव को नकार नहीं रहे थे, बल्कि उस नींव पर खड़े होकर पहली बार बाहर की दुनिया को देख रहे थे।
अच्छा, और अगर हम उस समय की बाहर की दुनिया की बात करें तो स्रोतों से ये साफ होता है कि पहली सदी के लोगों के लिए रोम ही दुनिया का अंत नहीं था।
बिल्कुल नहीं,
वे सिल्क रूट के जरिए भारत और चीन के बारे में जानते थे, वे पार्थिया साम्राज्य को जानते थे और अफ्रीका में मिस्र के दक्षिण में मौजूद मेरोया या न्यूबियन साम्राज्य जैसे शक्तिशाली व्यापारिक केंद्रों से भी अच्छी तरह वाकिफ के।
हाँ, दुनिया बहुत विशाल थी उनके लिए भी।
तो जब पृथ्वी के छोर की बात हो रही थी तो ये कोई मुहावरा नहीं था बल्कि एक वास्तविक भौगोलिक चुनौती थी।
और यहाँ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि ये दिशा इतनी तेजी से क्यों बदली।
हाँ, अचानक से ग्लोबल क्यों हो गए?
डॉक्टर कीनर बताते हैं कि यह नया सशक्तिकरण भविष्य के एक नए संसार की एक झलक था, मतलब एक फोरटेस्ट था। ये दुनिया को ये दिखाने के लिए था कि आने वाला युग कैसा होगा।
एक ऐसा युग जो यरूशलेम के मंदिर की भौतिक सीमाओं में नहीं बंधा होगा
या रोम की राजनीतिक सीमाओं में भी नहीं।
एक मिनट रुकिए, अगर वे अचानक से यरूशलेम की सीमाओं से निकलकर पार्थिया और न्यूबियन साम्राज्य तक जाने वाले हैं तो उनके सामने एक बहुत ही भयानक और व्यावहारिक समस्या खड़ी हो जाती है।
भाषा की समस्या।
बिल्कुल।
वे एक ऐसे वैश्विक मिशन पे कैसे जा सकते हैं जहाँ के लोगों की भाषा ही उन्हें नहीं आती? मतलब आप एक साझा संदेश कैसे फैला सकते हैं जब आप एक दूसरे से संवाद ही नहीं कर सकते?
ये तो सच में एक बड़ी रुकावट है।
ये तो इस पूरे मिशन को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देने वाली बाधा है।
और ठीक इसी व्यवहारिक शून्य को भरने के लिए पेंटेकोस्ट की घटना घटित होती है।
पेंटेकोस्ट।
हाँ, यह केवल एक रहस्यमयी आध्यात्मिक अनुभव नहीं था बल्कि एक कार्यात्मक आवश्यकता थी। स्रोत हमें बताता है कि वहाँ एक बहुत तेज हवा की आवाज आई और आग की लपटें दिखाई दी।
हवा और आग।
हाँ, और प्राचीन यहूदी संदर्भ में हवा और आग हमेशा ईश्वरीय उपस्थिति और कभी कभी उनके न्याय का प्रतीक रहे हैं। ये संकेत था कि कोई बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय घटना आकार ले रही है।
लेकिन आग और हवा से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात वो थी जिसने उस संचार की बाधा को तोड़ा, है ना?
बिल्कुल। सबसे बड़ा चमत्कार था अन्य भाषाओं में बोलना। अचानक वे मछुआरे और स्थानीय लोग, जो केवल अपनी क्षेत्रीय भाषा जानते थे, दुनिया भर से आए प्रवासियों की भाषाओं में धाराप्रवाह बात करने लगे।
यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि डॉक्टर कीना इस भाषाई चमत्कार का सीधा संबंध जेनेसिस अध्याय 11 में वर्णित टावर ऑफ बेबल की घटना से जोड़ते हैं।
बेबल की मीनार वाली कहानी?
हाँ, अगर हम बेबल की घटना के मनोविज्ञान को समझें तो वहाँ मानव जाति ने अहंकार में आकर एक ऐसी मीनार बनाने की कोशिश की थी जो आसमान को छू ले, और वहाँ ईश्वर ने भाषा का उपयोग एक हथियार के रूप में किया था।
भाषा को एक हथियार के रूप में, मतलब लोगों को एक दूसरे से अलग करने और उनके बीच भ्रम पैदा करने के लिए।
सटीक। बेबल में भाषा एक दीवार बन गई थी जिसने मानवता को पूरी पृथ्वी पर बिखेर दिया था, लेकिन पेंटेकोस्ट के दिन उसी भाषा का उपयोग एक पुल के रूप में किया गया।
अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है।
है ना? पवित्र आत्मा ने भाषाओं को नष्ट नहीं किया बल्कि अलग अलग भाषाओं का सम्मान करते हुए उनके जरिए एक नई क्रॉस कल्चरल एकता कायम की। ये बेबल का एकदम सीधा उल्टा था।
मैं इसे आज के तकनीकी संदर्भ में ऐसे सोच रहा हूँ।
बताइए।
मान लीजिए दुनिया भर में अलग अलग असंगत ऑपरेटिंग सिस्टम्स काम कर रहे हैं जो एक दूसरे का डेटा नहीं पढ़ सकते। मैक, विंडोज, लिनक्स, सब अलग।
हाँ, बिल्कुल असंगत।
और अचानक एक ऐसा अर्जेंट सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया जाता है जो उन सभी सिस्टम्स को रातों रात एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल बना देता है।
बहुत खूब।
अब हर सिस्टम दूसरे से बात कर सकता है बिना किसी एरर कोड के।
इस तकनीकी उपमा का सबसे अहम हिस्सा ये कंपैटिबिलिटी ही है। पेंटेकोस्ट का मुख्य उद्देश्य लोगों का ध्यान खींचने के लिए कोई जादू दिखाना नहीं था।
तो असली उद्देश्य क्या था?
ये साबित करना था कि ये नया संदेश किसी एक संस्कृति, एक जाति या एक भौगोलिक क्षेत्र की बपौती नहीं है। ये हर संस्कृति के लिए सुलभ है।
यह बात वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम पहली सदी के इस भाषाई चमत्कार के बारे में सुनकर इसे मेहर से एक प्राचीन कहानी या रूपक मानकर आगे बढ़ सकते हैं।
अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं।
लेकिन हमारा स्रोत इस प्राचीन इतिहास को सीधे 20वीं सदी की एक बहुत ही भावनात्मक और सच्ची घटना से जोड़ता है। ये घटना दिखाती है कि असल जीवन में इस चमत्कार का मनोविज्ञान कैसे काम करता है।
हाँ डॉक्टर कीनर, यहाँ 20वीं सदी की शुरुआत में लॉस एंजलिस में हुए अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल का गहराई से विश्लेषण करते हैं।
अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल।
ये आधुनिक इतिहास में उस प्राचीन पेंटेकोस्ट के अनुभव को दोबारा जीने का एक बहुत बड़ा प्रयास था, और इस आंदोलन के केंद्र में जो व्यक्ति थे उनका नाम था विलियम सीमोर।
विलियम सीमोर की कहानी अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। वे एक अफ्रीकी अमेरिकन थे और उनके माता पिता गुलाम रह चुके थे। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए।
सच में बहुत गहरी बात है ये।
एक ऐसा व्यक्ति जिसने गुलामी का दर्द और नस्लीय भेदभाव अपनी पिछली पीढ़ी से सीधे विरासत में पाया हो, वो एक ऐसी सभा का नेतृत्व कर रहा था जहां श्वेत और अश्वेत लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे।
और दूसरी तरफ उनके मेंटर थे चार्ल्स पारहम, जो एक श्वेत व्यक्ति थे।
यहीं पर तो विवाद शुरू होता है।
बिल्कुल। सीमोर उस सभा में आत्मा की उस शक्ति का अनुभव कर रहे थे जो नस्लीय दीवारों को गिरा रही थी, लेकिन पारहम, जो उसी धार्मिक कष्टभूमि से आते थे, उस क्रॉस कल्चरल मिलन को बर्दाश्त नहीं कर पाए।
स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि जब पारहम ने सभा को देखा तो उन्होंने अपनी नस्लवादी सोच के चलते इसे डार्क कैंप मीटिंग कहकर अपमानित किया,
जो कि बहुत ही निराशाजनक था।
मतलब ये सोचना कितना अजीब और दुखद है कि जिस संदेश का मूल ही सांस्कृतिक एकता और समानता था, इंसान अपने नस्लीय भेदभाव और पूर्वाग्रहों के कारण उसे भी कैसे दूषित कर देता है।
यह मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही अंधकारमय पहलू है कि हम नई और पवित्र चीजों को भी अपनी पुरानी नफरतों के सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं।
एकदम सही बात है। लेकिन सीमोर ने मारहम की इस तंज को केवल एक व्यक्तिगत अपमान के रूप में नहीं लिया।
जी,
उन्होंने इस पूरी घटना का बौद्धिक और धार्मिक स्तर पर विश्लेषण किया और एक बहुत बड़ा निष्कर्ष निकाला।
वो निष्कर्ष क्या था?
सीमोर ने यह पहचान लिया कि अगर कोई व्यक्ति आत्मा से भरा होने का दावा करता है, वो कितनी भी अन्य भाषाओं में क्यों ना बोले,
हाँ,
लेकिन अगर उसके दिल में नस्लीय और जातीय पूर्वाग्रह मौजूद हैं,
हाँ,
तो वो पूरा अनुभव ही खोखला है।
अरे वाह।
उनके अनुसार आत्मा का सबसे बड़ा और अंतिम प्रमाण कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि नस्लीय सीमाओं को पार करके एक दूसरे से सच्चा प्यार करना है। ढांचा तैयार किया उन्होंने, यह स्थापित किया कि पेंटेकोस्ट का असली उद्देश्य इंसानों के बीच की उन मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दीवारों को घिराना है जो सदियों से नफरत का कारण रही हैं।
बिल्कुल।
और सबसे कमाल की बात यह है कि सीमोर की यह सोच कोई 20वीं सदी का आधुनिक आविष्कार नहीं थी। जब हम वापस स्रोत पर जाते हैं तो पाते हैं कि समानता की यह अवधारणा तो पेंटेकोस्ट के दिन पीटर के उस पहले उपदेश में ही गहराई से बुनी हुई थी।
हाँ, पीटर ने उस दिन भीड़ को समझाते हुए पुराने नियम के एक नबी जोएल की भविष्यवाणी का हवाला दिया था।
जोएल की भविष्यवाणी,
पीटर घोषणा करते हैं कि जोएल की वह भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है जहां ईश्वर कहते हैं, मैं हर प्राणी पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। यहां हर प्राणी शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, हर प्राणी का मतलब है बिना किसी अपवाद के। और स्रोत बताता है कि पीटर की ये एक लाइन उस समय के समाज की तीन सबसे बड़ी और सबसे सख्त पदानुक्रमित दीवारों को एक झटके में तोड़ देती है।
और पहली दीवार थी लैंगिक या जेंडर की।
कैसे?
जोएल की भविष्यवाणी कहती है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। हमें पहली सदी के समाज को समझना होगा।
हाँ, जहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत अलग थी।
उस समय महिलाओं की आवाज को सार्वजनिक मंचों पर कोई जगह नहीं मिलती थी। उन्हें धार्मिक और सामाजिक रूप से दोयम दर्जे का माना जाता था, लेकिन ये नया संदेश उन्हें पुरुषों के बिल्कुल बराबर लाकर खड़ा कर देता है। संदेश देने का अधिकार अब जेंडर पर निर्भर नहीं था।
ये तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरी दीवार थी उम्र की। तुम्हारे बुजुर्ग सपने देखेंगे और युवा दर्शन पाएंगे।
हर समाज में उम्र के आधार पर एक सत्ता संरचना होती है।
बिल्कुल, या तो केवल बुजुर्गों के तजुर्बे को सर्वोच्च माना जाता है या फिर युवाओं की ऊर्जा को, लेकिन यहाँ दोनों को समान रूप से ज्ञान और शक्ति का पात्र माना गया है।
और तीसरी, जो शायद प्राचीन दुनिया की सबसे खतरनाक दीवार थी, वो थी वर्गीय या क्लास की सीमा, दासों और दासियों पर भी।
आज के समय में इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
हाँ, क्योंकि प्राचीन रोमन अर्थव्यवस्था पूरी तरह से दास प्रथा पर टिकी थी। एक दास को इंसान नहीं बल्कि एक संपत्ति या उपकरण माना जाता था। उसका अपना कोई अधिकार नहीं होता था।
ये किसी बहुत बड़े कॉरपोरेट जगत के उस सख्त पदानुक्रम को रातों रात खत्म करने जैसा है जहाँ एक नए इंटर्न और कंपनी के सबसे शक्तिशाली सीईओ,
हाँ,
दोनों को सीधे शीर्ष नेतृत्व से बात करने का बिल्कुल समान अधिकार मिल जाए बिना किसी सेक्रेटरी या मैनेजर की अनुमति के।
ये उपमा ठीक है, लेकिन इसमें एक और परत जोड़नी होगी। कॉर्पोरेट दुनिया में इंटर्न और सीईओ बात भले ही समान रूप से कर लें, लेकिन इंटर्न को सीईओ का वेतन तो नहीं मिलता।
हाँ, पैसे का फर्क तो रहता ही है।
जबकि इस नए आध्यात्मिक समुदाय में जो वेतन या जो आध्यात्मिक अधिकार एक स्वतंत्र नागरिक को मिल रहा था, हूबहू वही अधिकार एक दासी को भी दिया जा रहा था।
एकदम बराबरी।
यहाँ श्रोत मैरी का बहुत सुंदर जिक्र करता है जिन्हें ईश्वर की दासी कहा गया था। वे इस नए समानता पर आधारित समुदाय के लिए पूर्ण समर्पण का प्रतीक बन गईं।
तो अब तक हमने देखा कि कैसे उन्होंने भूगोल को पार किया, भाषाओं की दीवारें गिराई और विचारों के स्तर पर सामाजिक सीमाओं को तोड़ा।
एकदम सही।
लेकिन विचारों और अधिकारों की समानता तब तक कागजी ही रहती है जब तक वो लोगों के रोजमर्रा के जीवन को न छुए। जब ये नई चेतना समाज में आती है तो उसका असर केवल प्रार्थनाओं तक सीमित नहीं रहता, वो उनके रिश्तों और सबसे अहम बात, उनके बटुए तक पहुंचता है।
हाँ, बटुआ। ज्ञान या किसी भी नई विचारधारा का सबसे बड़ा परीक्षण यही है कि उसे जमीन पर कैसे लागू किया जाता है।
तो पीटर ने क्या किया?
पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो।
स्रोत के अनुसार उस समय यरूशलेम के मंदिर में कई इमर्शन पूल्स मौजूद थे।
हाँ, ये एक सार्वजनिक कदम था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो उस समाज के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव था। वे हर दिन घर घर जाकर एक साथ भोजन करने लगे।
आज के समय में साथ भोजन करना कोई बड़ी बात नहीं लगती, हम किसी के साथ भी कॉफी पी लेते हैं।
लेकिन प्राचीन दुनिया में इसका मतलब बहुत अलग था। प्राचीन मध्य पूर्व में किसी के साथ मेज साझा करना महज पेट भरना नहीं था।
कोई ऐतिहासिक संदर्भ है इसका?
हाँ, डॉक्टर कीनर यहाँ ग्रीक योद्धाओं की एक ऐतिहासिक घटना का संदर्भ देते हैं। कैसे दो दुश्मन योद्धा युद्ध के मैदान में एक दूसरे की जान लेने वाले थे।
अच्छा।
लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके पिताओं ने कभी एक साथ एक ही मेज पर भोजन किया था, तो उन्होंने तुरंत हथियार डाल दिए।
अरे वाह।
साथ भोजन करना एक स्थायी रिश्ते, एक गहरे समझौते और पूर्ण स्वीकार्यता का प्रतीक था।
इसका मतलब है कि जब वे अलग अलग वर्गों, जातियों और भाषाओं के लोग, मतलब मालिक और दास, पुरुष और महिलाएं, एक साथ एक ही मेज पर बैठकर खाना खा रहे थे, तो वे दुनिया के सामने एक जीता जागता विद्रोह कर रहे थे।
बिल्कुल, एक शांत विद्रोह।
वे दिखा रहे थे कि पुरानी सामाजिक संरचनाएं अब खत्म हो चुकी हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए।
क्या हुआ?
अगर स्रोत ये भी कहता है कि लोगों ने जरूरतमंदों की मदद के लिए अपनी जमीनें, संपत्ति और सामान बेचना शुरू कर दिया था, और वे संपत्ति से ज्यादा इंसानों को महत्व दे रहे थे, तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है।
पूछिए।
मैं आधुनिक राजनीतिक शब्दावली का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वे लोग पूरी तरह से कम्युनिस्ट हो गए थे, या ये कुछ और ही था?
अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें, तो ये एक बहुत ही गहराई से विश्लेषण करने वाला प्रश्न है। जब हम आधुनिक कम्युनिज्म की बात करते हैं, तो वो राज्य द्वारा थोपी गई एक व्यवस्था होती है,
जहाँ व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार छीन लिया जाता है।
हाँ, या उस पर नियंत्रण कर लिया जाता है। लेकिन एक्ट्स की किताब में जो आर्थिक व्यवहार हो रहा था, वो पूरी तरह से स्वैच्छिक था। इसे हम सहानुभूति का अर्थशास्त्र कह सकते हैं।
सहानुभूति का अर्थशास्त्र, मतलब ये किसी बाहरी दबाव के कारण नहीं हो रहा था?
बिल्कुल नहीं, ये उस नई आध्यात्मिक चेतना का स्वाभाविक परिणाम था। जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति को सच में अपना परिवार मान लेता है, तो इंसान की वो पुरानी फितरत कि वो केवल अपने लिए धन इकट्ठा करे, खुद बखुद टूट जाती है।
वे अपनी इच्छा से उन लोगों की मदद कर रहे थे जिनके पास कुछ नहीं था।
हाँ, ये इस बात का प्रमाण था कि जब मानव हृदय में बुनियादी बदलाव आता है, तो वो समाज की सबसे जटिल आर्थिक असमानताओं को भी कानून के डंडे से नहीं, बल्कि स्वेच्छा से सुलझा सकता है।
तो इस सब का क्या अर्थ है?
आप ही बताइए।
हमने यरूशलेम की एक छोटी सी भौगोलिक उम्मीद से शुरुआत की थी, फिर हम बेबल की भाषाओं के उल्टाव से गुजरे, अजूसा स्ट्रीट के नस्लीय संघर्ष को समझा, और अंत में हमने देखा कि कैसे ये पूरी यात्रा लोगों के आर्थिक व्यवहार को बदल देती है।
निष्कर्ष इस बात में छिपा है कि एक्ट्स के शुरुआती अध्यायों में जिस शक्ति की बात की गई है, उसका लक्ष्य कभी भी सत्ता पर कब्जा करना नहीं था।
तो लक्ष्य क्या था?
इसका उद्देश्य उन भाषाई, वर्गीय और नस्लीय पूर्वाग्रहों को हमेशा के लिए खत्म करना था। इसका उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी उम्र, वर्ग या जेंडर का हो, समान रूप से मूल्यवान हो।
और ये केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई पुरानी घटना नहीं है?
बिल्कुल नहीं, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।
ये आज के सूचना के इस भारी बोझ वाले युग में एक बहुत बड़ा दर्पण है। हम तकनीक के माध्यम से हर पल पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। हम एक सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में संदेश भेज सकते हैं।
तकनीक ने दूरियां तो मिटा दी हैं।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या तकनीकी रूप से जुड़े होने का मतलब भावनात्मक और सामाजिक रूप से जुड़े होना है? जब कोई इंसान इस जानकारी को देखता है, तो उसे ये सोचना चाहिए कि वो अपने संसाधनों और अपने आसपास के रिश्तों को किस नजरिए से देखता है।
डॉक्टर कीनर के स्रोत से एक और जो बहुत ही अहम बात निकल कर आती है, वो ये है कि एक्ट्स की किताब का अंत बहुत अचानक होता है।
मतलब कोई क्लाइमैक्स नहीं?
नहीं, इसका कोई पारंपरिक या स्पष्ट निष्कर्ष नहीं है। इसे जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया गया है।
और शायद इसे अधूरा इसलिए छोड़ा गया है ताकि वो मिशन, वो दीवारें गिराने का काम आज भी चलता रहे। और यहीं पर हम एक अंतिम उत्तेजक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं।
क्या विचार है?
यदि हम आज की इस डिजिटल दुनिया को देखें, जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स और सैटेलाइट्स के जरिए तो एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी है, लेकिन वैचारिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उतनी ही ज्यादा बंटी हुई और खंडित है, तो क्या यही डिजिटल दुनिया आज का नया पृथ्वी का छोर है?
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारी वर्तमान सभ्यता की वास्तविक स्थिति पर विचार करने के लिए मजबूर करता है।
और अगर ये डिजिटल विभाजन ही आज का पृथ्वी का छोर है, तो आज के समय में उस प्राचीन सांस्कृतिक और भाषाई एकता का असली स्वरूप कैसा दिखेगा?
एक सोचने वाली बात है।
क्या हम उन दीवारों को फिर से खड़ा कर रहे हैं जिन्हें गिराने के लिए वो पूरी क्रांति शुरू हुई थी? ये वो सवाल है जिस पर ये चर्चा समाप्त होने के बाद भी विचार किया जाना चाहिए। याद रखिए, सच्ची शक्ति वो नहीं है जो दूसरों को दबाकर खुद को स्थापित करती है, बल्कि सच्ची शक्ति वो चेतना है जो हमारे बीच की दीवारों को हमेशा के लिए गिरा देती है।